वेद ने पूरा दिन शिवांशा के साथ बिताने का प्रॉमिस किया था। शिवांशा को भी यही लगा था कि घर आने के बाद वेद उसके साथ रहने वाला है। लेकिन जैसे ही वेद और शिवांशा शाम के 6 बजे के करीब घर पहुंचे, उसे आराम करने का बोलकर वेद बाहर चला गया था। रात के लगभग 9 बजने को आए थे, लेकिन फिर भी अभी तक चौहान फैमिली में से कोई भी शख्स घर नहीं आया था। शिवांशा अकेले बोर होने लगी थी। वो बालकनी में खड़ी इधर उधर चहलकदमी कर रही थी। उसने मुंह बनाकर मन में कहा, अब तो आज का दिन भी खत्म होने वाला है और आप अब तक घर नहीं आए। अगर साथ नहीं रहना था तो प्रॉमिस क्यों किया? मैंने कितना कुछ सोचा था कि आपके साथ टाइम स्पेंड करूंगी, बातें करूंगी और आपको और अच्छे से जानूंगी। लेकिन नहीं, आपने सच ही कहा था। आपके साथ रहने के लिए मुझे सबसे पहले खुद को ये समझाना होगा कि आप मुझे अपना टाइम नहीं दे सकते। बाहर काफी अच्छी हवा चल रही थी। शिवांशा बालकनी की रेलिंग पर हाथ रखकर खड़ी हुई, तभी उसकी आंखें छोटी हो गई थीं। उसने देखा था कि वेद की गाड़ी अभी भी वहां पार्क की हुई थी। मैंने तो कोई गाड़ी की आवाज नहीं सुनी, फिर वेद कब घर आए? क्या वो तब से घर पर ही हैं? शिवांशा ने उलझन भरे स्वर में खुद से बड़बड़ाकर कहा। वो जल्दी से दौड़कर अपने कमरे में गई। उसने कमरे और बाथरूम दोनों में चेक कर लिया था, पर वेद कहीं नहीं था। जब वेद उनके कमरे में नहीं होता था तो वो अक्सर स्टडी रूम में मिलता था। शिवांशा जल्दी से वहां गई, लेकिन वो हिस्सा भी पूरी तरह खाली था। वेद की गाड़ी चौहान पैलेस में देखकर एक पल के लिए उसके चेहरे पर चमक आ गई थी, लेकिन जब वेद वहां नहीं मिला तो शिवांशा का चेहरा फिर से उतर गया था। जरूर किसी और गाड़ी में गए होंगे, मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ, शिवांशा ने सिर झटक कर कहा। शिवांशा वापस अपने कमरे में जाने के लिए मुड़ी, तभी रानी उसके सामने आ गई थी। शिवांशा को यही लगा कि वो उसे खाना खाने के लिए कहने आई है, क्योंकि जब भी फैमिली के बाकी लोग देरी से आते थे तब वेद रानी को कॉल करके शिवांशा को खाना खाने का कह देता था। मुझे भूख नहीं है और बाकी सब आएंगे तभी मैं खा लूंगी, शिवांशा ने उसके बिना कुछ कहे ही जवाब दिया। अरे नहीं भाभी, रानी ने जल्दी से कहा, मैं आपको खाना खाने के लिए कहने नहीं आई हूँ। मैं तो आपको ये बताने आई थी कि वेद भैया आपको ऊपर छत पर बुला रहे हैं। आप कभी ऊपर छत पर नहीं गई है ना, क्या मैं आपके साथ चलूँ? वेद घर पर ही हैं, शिवांशा ने आंखें बड़ी करके पूछा। हाँ, वो आपके साथ ही तो घर आए थे और उसके बाद से कामों में लगे हुए हैं। इससे पहले कि वो मुझे फालतू बातें करने के लिए डांट लगाए, आप खुद ही ऊपर चली जाइए, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां उस तरफ से घूम कर जाएंगी, रानी ने बताया। शिवांशा ने उसकी बात पर हामी भरी और तेज कदमों से चलते हुए सीढ़ियों की तरफ जाने लगी। उसका मुरझाया हुआ चेहरा फूलों की तरह खिल चुका था। मैं भी न जाने क्या क्या सोच रही थी। अगर वो घर पर ही थे तो मुझे भी अपने पास बुला लेते, मैं उनके कामों में उनकी हेल्प कर देती, शिवांशा ने मुस्कुराते हुए कहा। वो जल्दी से ऊपर पहुंची तो उसने देखा कि छत पर अंधेरा था। यहाँ तो कोई नहीं है, शिवांशा ने बिल्कुल धीमी आवाज में कहा। एक नज़र इधर उधर देखने के बाद जब शिवांशा को वहाँ कोई भी दिखाई नहीं दिया तो वो वापस जाने के लिए पलट गई। जैसे ही शिवांशा पलटी, किसी ने उसे खींचकर दूसरी तरफ कर लिया था और उसकी आंखों पर अपने हाथ रख दिए थे। एक पल के लिए घबराहट के मारे शिवांशा के दिल की धड़कन तेज हो गई थी, लेकिन वो वेद के स्पर्श को पहचानती थी और उसकी खुशबू महसूस होते ही उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कुराहट तैर गई थी। कुछ मत बोलना, बस राइट मुड़ने के बाद आगे चलती रहना, वेद ने उसके कान के पास धीमी आवाज में कहा। शिवांशा ने वेद की बात पर हामी भरी। चौहान पैलेस की छत काफी बड़ी थी। दूसरी तरफ जाते ही वेद ने शिवांशा की आंखों से अपना हाथ हटाया और इसी के साथ वहां पर लाइटें जल उठी थी। वेद ने उस एरिया को फेरी लाइट से बहुत ही खूबसूरती से सजाया था। सामने उनके लिए एक डिनर टेबल सजाया हुआ था। डिनर टेबल के चारों तरफ सफेद पर्दों और उनके बीच लगी लाइट से आसपास एक बड़ा सा टेंट बनाया हुआ था। वो बिल्कुल किसी सपने की तरह लग रहा था। सुबह शिवांशा ने वेद को उसके साथ कैंडल लाइट डिनर करने और साथ में वॉक करने की इच्छा बताई थी और शाम तक वेद ने सारा अरेंजमेंट कर भी दिया था। शिवांशा ने जल्दी से वेद की तरफ देखा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट और खुशी देखकर वेद के दिल को जो सुकून मिल रहा था, काश वो उसे शब्दों में बयां कर पाता। वो बस खोई हुई आंखों से शिवांशा की तरफ देख रहा था। थैंक यू सो मच, पर सच में इतने सब की जरूरत नहीं थी, शिवांशा वेद के पास आते हुए बोली। और जरूरत क्यों नहीं थी? पहली बार तुमने कुछ बताया था कि तुम्हें क्या पसंद है और मैं तुम्हारी हर जायज इच्छा को पूरा करूंगा, वेद ने गहरी आवाज में कहा और उसके बालों को कानों के पीछे कर दिया था। जायज इच्छा से आपका मतलब? मैं कौन सा आपसे कुछ उल्टा सीधा मांगती हूँ, शिवांशा ने आंखें छोटी करके उसे देखते हुए कहा। आई डोंट ट्रस्ट यू, कल को तुम कुछ ऐसा मांग लो जो तुम्हारे लिए सही नहीं हो या फिर बेवजह की मांग हो तो मैं उसे कभी पूरा नहीं करने वाला, वेद ने उसे घूरते हुए कहा। एक रोमांटिक सरप्राइज देने के बाद इतना अनरोमांटिक कौन बिहेव करता है, शिवांशा ने अपने दोनों हाथ सीने पर बांध कर दूसरी तरफ देखा। मैंने कहा ना, मेरे साथ रहना आसान नहीं है, मैं इतना ही अनरोमांटिक हूँ। मेरे साथ रहना है तो डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। मैं तुम्हें फेरी टेल के सपने नहीं दिखाने वाला और ना ही ये कहूंगा कि तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा, बिल्कुल नहीं। तुम्हें स्ट्रांग होना होगा।
होगा और ये रियल वर्ल्ड है। यहाँ सर्वाइव करने के लिए तुम्हें अपने परियों की कहानी वाली दुनिया से बाहर आना होगा, फिर चाहे तुम्हें सच्चाई दिखाने के लिए मुझे तुम्हें डांटना भी क्यों ना पड़े। वेद ने शिवांशा का चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहा। शिवांशा ने बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिला दिया था। वेद ने उसे डाइनिंग टेबल की तरफ चलने का इशारा किया। वहां जाकर उसने सबसे पहले शिवांशा के लिए चेयर पुल की और फिर उसे बिठाने के बाद खुद उसके सामने बैठ गया था। वेद खुद उसके लिए खाना सर्व कर रहा था। अब तक भले ही शिवांशा वेद के सामने नाराजगी जता रही हो या उसके रूढ़ होने पर मुंह बना रही थी, लेकिन सच तो ये था कि उसे बहुत अच्छा लग रहा था। शिवांशा ने वहां लगे खाने की तरफ देखा तो सब कुछ उसकी पसंद का था। उसने वेद से हैरानी भरे लहजे में पूछा, मैंने कभी आपको अपनी चॉइस नहीं बताई, फिर आपको मेरे फेवरेट फूड के बारे में कैसे पता चला? अरमान से पूछा था, वेद ने जवाब दिया। शिवांशा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। वे दोनों साथ में खाना खा रहे थे। वो माहौल सच में बहुत अच्छा था। आसमान में तारों से भरी रात और वहां वो लाइटिंग, उसके ऊपर वेद का साथ शिवांशा को बहुत सुकून दे रहा था। डिनर हो जाने के बाद वेद ने शिवांशा के हाथ को थामकर उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझाई और फिर उसकी तरफ देखकर पूछा, अच्छा बताओ वॉक करने के लिए कहां जाना है, नीचे चलें या यहीं ठीक है? यहीं अच्छा लग रहा है, मुझे खुला आसमान चाहिए जो यहाँ से अच्छे से दिखाई दे रहा है, शिवांशा ने जवाब दिया। वेद उसे टहलने के लिए दूसरी तरफ लेकर गया। उन दोनों के बीच बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी, लेकिन हाँ, शिवांशा का हाथ वेद के हाथ में था। दूसरे हाथ से उसने कसकर मुट्ठी बांध रखी थी। अगर उसका बस चलता तो इतने रोमांटिक डिनर के बाद वो इस तरह टहलने के बाद वेद के सीने पर सिर रखकर सोना ज्यादा पसंद करती, पर ना तो वो वेद को ये ख्वाहिश बता सकती थी और ऊपर से वेद ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि वो उसकी उल्टी सीधी इच्छाओं को पूरा नहीं करने वाला है। हाँ, अगर उनकी शादी हुई होती तो शायद शिवांशा को उसके करीब आने के लिए कहने में इतनी झिझक नहीं होती।
इतना अच्छा लगा कि सब कुछ भूलकर चुप ही हो गई, वेद ने उनके बीच छाई खामोशी को तोड़ते हुए कहा। हाँ बिल्कुल, मेरा बस चले तो मैं इस लम्हे को यहीं पर रोक दूं और उम्र भर के लिए आपके साथ इस छत पर अपनी जिंदगी बिता दूं, शिवांशा ने वेद की तरफ देखकर जल्दी से कहा। शिवांशा ने जब वेद के चेहरे की तरफ देखा तो उसका मुंह बना हुआ था। शिवांशा हंसते हुए बोली, हाँ मुझे पता है आपको इस तरह के डायलॉग सुनने और ये सब करने की आदत नहीं है, पर कम से कम मुंह तो मत बनाइए, वरना आगे से मैं अपने दिल की बात आपके सामने रख तक नहीं पाऊंगी। हाँ ठीक है, चलो पूरी जिंदगी ना सही, लेकिन हाँ आज की रात तुम्हारी यहीं बिताने का अरेंजमेंट मैंने कर रखा है, वेद बोला, जिस पर शिवांशा खुशी से उछल पड़ी थी। वो जल्दी से आगे बढ़कर वेद को गले लगाने को हुई, तभी वेद कुछ कदम पीछे हो गया था। उसने हाथ के इशारे से शिवांशा को रोकते हुए कहा, पागल लड़की। वेद ने शिवांशा को छत के दूसरे कोने की तरफ देखने का इशारा किया। वहां भी एक टेंट लगा हुआ था जिसके अंदर पहले जितनी लाइटिंग नहीं थी, लेकिन हाँ वहां सोने का अरेंजमेंट किया हुआ था। शिवांशा उसे देखकर इतनी एक्साइटेड हो गई कि वो वेद को वहीं पर छोड़कर उस तरफ दौड़कर जाने लगी। वेद मुस्कुराते हुए उसके पीछे पीछे आ रहा था। सच में पागल है, वेद ने धीरे से बड़बड़ाकर कहा। शिवांशा जब टेंट हाउस के अंदर पहुंची तब एक पल के लिए उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थीं, क्योंकि वहां पर सिर्फ एक ही गद्दा लगा हुआ था और उससे भी हैरानी की बात ये थी कि वहां पिलो भी एक ही रखा हुआ था। वेद तो उसे बेवजह गले तक नहीं लगने देता था और रिश्ते में आगे बढ़ने का कहने के बावजूद वे दोनों अब तक अलग अलग सो रहे थे। शिवांशा के लिए ये यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल था कि वेद ने उनके सोने के लिए एक ही बिस्तर का इंतजाम किया था। उसके इस उलझन भरे चेहरे को देखकर वेद ने सिर हिलाया और फिर टेंट के अंदर जाते हुए शिवांशा का हाथ पकड़कर उसे अंदर खींच लिया था। कुछ डिमांड तुम नहीं भी बताओगी तो मैं तुम्हारी आंखों में पढ़ लूंगा, वेद ने गहरी सांस लेकर कहा और बिस्तर पर लेट गया था। उसने शिवांशा को अपने कंधे की तरफ इशारा किया। शिवांशा भले ही वेद के करीब आने की कितनी भी जिद क्यों न करे, लेकिन हाँ वो उसके ज्यादा करीब होने पर हड़बड़ा जाती थी। वेद के बुलाने के बावजूद वो खोई हुई निगाहों से वहां पर खड़ी हुई थी। अब आ रही हो या फिर बेडरूम में सोने के लिए चले, लगता है तुम्हें तुम्हारे काउच की कुछ ज्यादा ही आदत हो गई है, वेद ने उसे छेड़ते हुए कहा। शिवांशा ने जल्दी से नामे सिर हिलाया और वेद के पास आकर लेट गई थी। उसका सिर इस वक्त वेद के सीने पर था और सिर्फ उसी की दिल की धड़कनें नहीं बढ़ी हुई थी, वो वेद की दिल की धड़कनों को भी अच्छे से महसूस कर सकती थी। शिवांशा ने अपना चेहरा वेद की तरफ किया और हल्की भारी आवाज में कहा, मुझे अभी भी अपनी किस्मत पर यकीन नहीं होता, शायद मैंने अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा काम किया होगा जो आप मुझे मिले हो। क्या तुम एक छोटे से डिनर सेटअप के लिए मेरी तारीफें और बार बार हर चीज के लिए खुद को ब्लेम करना बंद करोगी, वेद ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। शिवांशा ने मुस्कुराकर उसकी बात पर हामी भरी। आज की रात शायद लंबी होने वाली थी और पहली बार ये लंबी रात शिवांशा की जिंदगी में कुछ अच्छा ही लेकर आई थी। दूसरी तरफ जब से अरमान दिल्ली पहुंचा था उसे नव्यांशी का बिहेवियर काफी अजीब लग रहा था। हालांकि उसने नव्यांशी से कई बार पूछा भी, लेकिन उसने ठीक से उसकी बात का जवाब नहीं दिया। रात को डिनर और बाकी सारे काम निपटाने के बाद जब अरमान अपना काम करने के लिए स्टडी रूम में पहुंचा तब उसे चीजें इधर उधर महसूस हुईं। अरमान को ये समझते समय नहीं लगा कि उसके जाने के बाद वहां कौन आया था और नव्यांशी का बर्ताव अचानक से इतना बदल क्यों गया था। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था नव्यांशी, एंड आई एम सो सॉरी, अब तुम यहाँ नहीं रह सकती हो, अरमान ने बेहद धीमी लेकिन ठंडी आवाज में कहा। उसने जल्दी से स्टडी रूम का दरवाजा बंद किया और इस वक्त उसके कदम नव्यांशी के कमरे की तरफ बढ़ रहे थे।